بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir، اور انداز جہاں میں آج ہم سانحہ منا کی تحقیقات اور سعودی حکومت کی ذمہ داری کے زیر عنوان گفتگو کریں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، سانحہ منا کو تقریباً 2 ماہ کا عرصہ ہو رہا ہے، اب بھی بہت سے افراد لاپتہ ہیں، اور اس سانحہ کے تعلق سے ابہامات نہ صرف یہ کہ کم نہیں ہوئے ہیں بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ سعودی حکومت کا طرز عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس کی پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس سانحہ کے حقائق سامنے نہ آ سکیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس نقطۂ نگاہ سے گفتگو کریں گے کہ اس سانحہ کی تحقیقات کیوں ضروری ہیں اور سعودی حکومت ضروری تعاون سے گریز کیوں کر رہی ہے۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
سانحہ منا کو 2 ماہ کا عرصہ مکمل ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود سعودی حکام نے نہ تو اس سانحہ میں شہید اور زخمی ہونے والے حاجیوں کے صحیح اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اور نہ ہی عالم اسلام کی بدنامی کا سبب بننے والے اس واقعے کے اسباب و علل کے بارے میں کسی قسم کی جامع اور دقیق تحقیقات انجام دی ہیں۔ اس صورتحال کا سب سے عجیب پہلو یہ ہے کہ سوائے اسلامی جمہوریہ ایران، عالم اسلام کے سبھی ملکوں نے، خاص طور سے ان ممالک نے بھی سانحہ منا کے حوالے سے چپ ساتھ رکھی ہے جن کے حاجی سعودی حج انتظامیہ کی نااہلی کی نظر ہو گئے ہیں۔ سعودی حکومت سانحہ منا کے حوالے سے ابتدا ہی سے دیگر ملکوں کے ساتھ تعاون سے گریزہ رہی ہے، اور اس نے سانحہ میں شہید اور زخمی ہونے والوں کی شناخت اور علاج معالجے نیز لاشوں اور زخمیوں کی منتقلی کے حوالے سے بھی ویسا تعاون نہیں کیا جیسا ایک میزبان ملک کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری تھی۔ یہاں تک کہ شہید ہونے والے حاجیوں کو بغیر شناخت کیے اور ان کے ورثہ کی اجازت کے بغیر ہی اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ مختلف ملکوں کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس سانحے میں 7,000 سے زائد حجاج کرام شہید ہوئے ہیں، جو حج کے دوران رونما ہونے والے اب تک کے سانحات میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس سانحے کی وسعت اور بد انتظامی کے لامتناہی سلسلے کو دیکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کی مکمل اور جامع تحقیقات انجام دی جائیں، اور دنیا کے دیگر اسلامی ملکوں کو بھی تحقیقات میں شریک اور اس کے نتائج سے آگاہ کیا جائے، لیکن سعودی انتظامیہ مسلسل تعاون سے گریز کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے منگل کو تہران میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سانحہ منا سے متعلق دستاویزی ثبوت اور شواہد جمع کر رہے ہیں تاکہ حقائق کا پتہ لگایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس اس بات کا ہے کہ سعودی حکومت اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ اسلامی جمہوریہ ایران شروع ہی میں واضح کر چکا ہے کہ وہ سانحہ منا کو سیاسی نہیں بنانا چاہتا، لیکن وہ اس واقعے کی ایسی جامع اور مکمل تحقیقات کے حق میں ہے جس کے ذریعے مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ ظاہر ہے کہ ایسا تب ہی ممکن ہے کہ جب ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا جائے جو سانحہ کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد اس کے حقیقی اسباب کا پتہ لگائے، اور اگر کوئی شخص یا اشخاص اس میں ملوث پائے جائیں تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کی جا سکے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ سانحہ کے تعلق سے ضروری اقدامات کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران نے دیگر ملکوں سے بھی تبادلہ خیال شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ منا میں شہید ہونے والوں اور ان کے پسماندگان کے حقوق کو محفوظ رکھنے کے لیے اس سانحہ کی ہمگیر تحقیقات ضروری ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک ایران کی طرح دیگر اسلامی ممالک بھی سانحہ منا کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اس سانحے کی جامع اور مکمل تحقیقات نہیں کرائی جا سکتی، اور نہ ہی مستقبل میں ایسے سانحات کی روک تھام کی کوئی ٹھوس ضمانت فراہم ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دیگر اسلامی ممالک سانحہ منا کی تحقیقات کے حوالے سے کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کیا وہ سانحہ کی تحقیقات کرانے میں ویسی ہی دلچسپی لیں گے جیسی اسلامی جمہوریہ ایران لے رہا ہے، یا آل سعود خاندان کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعلقات کی خاطر ہزاروں حجاج کرام کے خون کو یکسر نظر انداز کر دیں گے؟
ناظرین، سانحہ منا کے تعلق سے ابہامات دور ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس سانحہ کو 50 دن ہونے کو آ رہے ہیں، अब भी बहुत से लोग लापता हैं। ईरान के मुतअद्दिद हुज्जाज किराम भी लापता हैं। मुमकिन है कि दीगर मुल्कों के कुछ हुज्जाज किराम भी लापता हों, लेकिन आवाज़ ईरान की ही जानिब से उठ रही है। इसके अलावा इस ताल्लुक से इबहामात भी बढ़ते जा रहे हैं। सऊदी हुकूमत न खुद तहकीकात करा रही है और न ही ईरान के साथ तआवुन के लिए तैयार है, जबकि उसने सानहे मिना के बहुत से शहीदों को उनके मुल्कों और वरसा की इजाज़त के बगैर ही सऊदी अरब में दफन कर दिया है। इनमें ईरानी शहदा भी शामिल हैं, जबकि ईरान ने पहले ही दिन वाजे कर दिया था कि उसकी इजाज़त नहीं है कि ईरान का कोई भी शहीद सऊदी अरब में दफन किया जाए। ईरान का यह भी मुतालबा है कि सानहे मिना के ताल्लुक से तमाम हकायक सामने लाए जाएं, कोई बात ना छुपाई जाए और एक गैर जानिबदार बैन अल-अक़वामी तहकीकाती कमेटी के जरिए इस सानहे की तहकीकात अंजाम दी जाए। इसके अलावा मुख्तलिफ मुल्कों के दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी के अराकीन और सहाफियों ने भी इस सानहे के हकायक सामने लाने का मुतालबा किया है, लेकिन सऊदी हुकूमत इस सानहे से मुतालिक किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। गोया 7,000 से जायद हुज्जाज किराम की शहादत की उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, जबकि बहुत से हलकों की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि यह सानहा हादिसाती तौर पर रूनुमा नहीं हुआ है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत वजूद में लाया गया है। सऊदी हुकूमत का अदम तआवुन और उसकी हठधर्मी से यह शक बढ़ता जा रहा है कि यह वाकया किसी घिनौनी साजिश का नतीजा हो सकता है। अगर यह बात सही है तो यह मालूम होना चाहिए कि इस साजिश का हदफ क्या था। इसी के साथ आज के प्रोग्राम में हम इस बात का भी जायजा लेंगे कि सऊदी हुकूमत मुमकिन है कि इस सानहे के हकायक को पर्दे इबहाम में बाकी रखने की अपनी कोशिशें जारी रखे और तआवुन के लिए जैसे अब तक तैयार नहीं हुई है, आइंदा भी तैयार ना हो। इस सूरत में उन मुल्कों को क्या करना चाहिए जिनके हुज्जाज किराम इस सानहे की भेंट चढ़े हैं। जाहिर है कि इस सानहे के ताल्लुक से यूं तो पूरी उम्मत मुस्लिमा पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं, क्योंकि इस सानहे ने जहनों में यह ख्याल पैदा कर दिया है कि हज महफूज नहीं रहा है। इसकी अदायगी में दर्दनाक सानहे का सामना भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। अगर इस ख्याल की तकवियत होती है तो खुद फरीज़े हज पर सवालिया निशान लग सकता है। इस्लाम की अहम तरीन इज्तमाई इबादत की हुरमत मजरूह हो सकती है, जिसको बचाना पूरी उम्मत मुस्लिमा बिलखसूस मुस्लिम हुकूमतों का फरीजा है। ये सारे खदशात उसी वक्त दूर हो सकते हैं जब सानहे मिना की बैन अल-अक़वामी तहकीकाती कमेटी के जरिए शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाए और इसके तमाम हकायक सामने लाए जाए। हमारे आज के प्रोग्राम में लंदन से बर्रे सगीर के मुमताज दानिश्वर और सीनियर तजिया निगार मुशर्रफ हुसैनी, कराची से सीनियर तजिया निगार असद जैदी और इस्लामाबाद से पाकिस्तान के एक तजिया निगार अबरार हुसैन हिस्सा लेंगे। हमारे साथियों ने बताया है कि कराची जी चलते हैं कराची, जहां पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार असद जैदी साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। जैदी साहब, सानहे मिना को तकरीबन 2 महीने होने को आए लेकिन इसके हकायक अब तक सामने नहीं आ सके हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप?
यकीनन ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि 50 दिन गुजर गए हैं लेकिन अभी तक सऊदी हुकूमत की तरफ से कोई वाज़े और शफाफ तहकीकात सामने नहीं आ सकी। पूरी आलम इस्लाम और पूरी आलम इंसानियत का सऊदी हुकूमत से ये सवाल है कि अभी तक इस वाक़े के हवाले से ज़िम्मेदारों का बाकायदा तौर पर तय नहीं किया जा सका। इस वाक़े को एक फितरी हादसा करार दिया गया है, लेकिन इस वाक़े की अगर तमाम तफसीलात को देखा जाए तो भरपूर अंदाज में इंतज़ामी नाअहली साबित होती है, क्योंकि इस वाक़े में इस बात की इसकी जो रिपोर्ट्स को देखा जाए और उसके बाद जितनी तफसीलात आती रहीं, ये बात खुल के सामने आई है कि इसमें वसी पैमाने पर इंतज़ामी नाअहली का दखल था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा फुकदान था, गैर तरबियत याफ्ता अफराद जो कि वहाँ पे सिक्योरिटी पर मामूर थे और इसके अलावा हुजाज के मैटर्स को लुक आफ्टर करने के लिए जो थे उन वो लोग भी गैर तरबियत याफ्ता थे, और उन्होंने जिस अंदाज में इसको हैंडल करने की कोशिश की उसके हवाले से भी भरपूर नाअहली खुल के सामने आई। सबसे अहम बात है कि कुछ उमूर ऐसे हैं कि जिसके हवाले से मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी आलम इस्लाम को सऊदी हुकूमत से सवाल करना चाहिए। कि अगर इसके हवाले से मैं कुछ अहम फैक्ट्स पेश करना चाहूँगा कि जिस वक्त हुजाज कराम मिना से जमरात की तरफ रवाना होते हैं तो 5 रास्ते हैं जिनसे वो रवाना होते हैं जमरात की तरफ, जिनमें से एक है किंग फैसल स्ट्रीट, दूसरा अल जवारा स्ट्रीट, तीसरी सोकुल अरब, चौथी 204 नंबर स्ट्रीट और पाँचवीं 206 नंबर स्ट्रीट। अब रिवायती तौर पर यह होता है कि जिस वक्त 204 नंबर स्ट्रीट से ईरानी हुजाज को दाखिल किया जाता है और सऊदी पुलिस उनके हमरा होती है, लेकिन उस वक्त जो सोकुल अरब स्ट्रीट है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल बिल्कुल बरक्स हुई। जिस वक्त हुजाज कराम वहाँ पे जो ईरानी हुजाज कराम 204 नंबर स्ट्रीट से दाखिल हुए हैं और उसी के साथ 223 नंबर स्ट्रीट से अफ्रीकी हुजाज भी दाखिल होते हैं। अब ये बहुत एक अहम पॉइंट है कि यहाँ पर एक 215 नंबर स्ट्रीट भी है जो कि एमरजेंसी एग्जिट के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जिस वक्त यहाँ पर हुजाज कराम का एक इल्ज़ाम हुआ है 204 नंबर स्ट्रीट पर, तो उस वक्त सोकुल अरब स्ट्रीट को हर साल की तरह ब्लॉक किया जाता था, लेकिन साल उसको ब्लॉक नहीं किया गया। और सबसे अहम बात है कि 215 नंबर स्ट्रीट को पुलिस ने ब्लॉक किया हुआ था। वो क्यों किया हुआ था पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ पे सऊदी शहजादे की आमद से उसके प्रोटोकॉल की वजह से। ये वो इंतजामी उमूर है जिसके हवाले से बाकायदा जिम्मेदारों का तयन करना ज़रूरी है कि इसके हवाले से एक खुली और शफाफ तहकीकात आलम इस्लाम के सामने लाई जाएँ, और अगर सऊदी हुकाम इसके हवाले से अगर उनके पास तहकीकात के लिए मुनासिब उनके पास वसाइल नहीं है या उनके पास मुनासिब उसके लिए फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो खुल के आलम इस्लाम के दूसरे ममालिक से अपील कर सकते हैं कि इसके हवाले से हमारे साथ ताउन करें, और कोई भी इस्लामी मुल्क इस हवाले से उनसे ताउन करने से गुरेज नहीं करेगा, हर तरह की एक्सपर्टीज़ वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने तहकीकात में ना तो ताउन के हवाले से किसी भी इस्लामी मुल्क या किसी भी दूसरे मुल्क से रिक्वेस्ट की है, और खुद भी जिम्मेदारी से उन्होंने कोई जामिया तहकीकात अभी तक सामने नहीं लेके आए हैं। और एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि सऊदी अरब जो कि रिवायती तौर पे 5 मिलियन हुजाज कराम को हर साल एंटरटेन कर रहा है, इस साल तादाद 50% कम थी, यानी 2.5 मिलियन की तादाद थी। जब 2.5 मिलियन तादाद थी तो उसके बावजूद इतना बड़ा एक इंतज़ामी नाअहली का जो फुकदान सामने नजर आया, इसके हवाले से भी अभी तक कोई जिम्मेदारी का तयन नहीं किया गया कि कौन लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं और इसके लिए क्या अभी तक इकदाम किए गए हैं। जैसे कि आपने कहा कि अभी तक जो हुजाज हैं वो लापता हैं, ईरान के 37 हुजाज हैं जिनके बारे में अभी तक नहीं मालूम हो सका है कि उनके पर क्या गुजर गई है। इस तरीके से और ममालिक के भी हैं, तो एक तो ये कि जिम्मेदारों का अभी तक तयन नहीं किया गया, दूसरी चीज़ है कि अभी तक सऊदी हुकूमत की तरफ से वाजह तौर पर मालूमात शेयर नहीं की गई हैं। आलमी बरादरी को और आलम इस्लाम को अभी तक यह नहीं बताया गया है कि तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है और उसमें किन जिम्मेदारों का तयन किया गया और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी मुतवक्को है, लेकिन अभी तक इस हवाले से मुकम्मल तौर पे खामोशी है। तो ज़रूरत इस बात की है कि सऊदी अरब की हुकूमत इसके हवाले से खुल के जिम्मेदारों का तयन करे, और तहकीकात में अगर उनके पास उसकी कैपेबिलिटी नहीं है तो वो दूसरे इस्लामी मालिक से रिक्वेस्ट करें, उनसे अपील करें कि हमारे साथ कोऑपरेट करें और उनसे डाटा शेयर करें ताकि इसके हवाले से एक मुकम्मल जामे रिपोर्ट सामने आ सके। क्योंकि ये कोई मामूली हादसा नहीं है कि जिसको हम एक फितरी हादसा डिक्लेयर करके और सिर्फ उस पर खामोशी इख्तियार कर ली जाए, क्योंकि आज ये हादसा हुआ है, इस साल अगले साल फिर इस तरीके से हो सकता है, और इस तो इसके हवाले से यकीनन एक मजबूत और जामिया तहकीकात की ज़रूरत है।
बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथियों ने बताया कि अबरार हुसैन साहब से भी रابطہ हमारा बरकरार हो गया है। अबरार साहब, सानहे मिना में बहुत से हुजाजे किराम लापता हो गए थे जिनकी बड़ी तादाद अब भी लापता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
रहमान रहीम, मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ इस प्रोग्राम में मुझे भी दावत दी गई, और इत्तेफाक की बात यह है कि इस साल खुदा के फजल व करम से इस हज में मैं भी खुद भी शरीक था, और जब सानहा हुआ तो इस मकाम से मैं तकरीबन 15 मिनट पहले यहाँ से गुजरा था और जमरात की तरफ गया था। वहाँ सूरत हाल ये थी कि जिस तरह भी इंतज़ामी हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी, जनाब जदी साहब ने भी इस हवाले से फरमाया, मैं तो खुद इसका चश्मदीद गवाह हूँ। सऊदी हुकूमत कोई भी हाजी जो चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, जिस भी फिरके से उसका ताल्लुक हो, जब वो एयरपोर्ट पे उतरता है और फिर ये जितने भी मनासिक के हज हैं उनकी अंजामदही के लिए जितने दिन भी वहाँ रहता है उसकी कोई खातिरख्वाह जो है वहाँ तवाजो नहीं की जाती। इंतज़ामी एतबार से बहुत बड़े बड़े लैप्सेस होते हैं। उस दिन वाक़ हुआ, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और सुबह के वक्त ही बहुत इंतहाई गर्मी थी और रश भी बहुत ज़्यादा था। हमने देखा खुद, हम जब जा रहे थे तो हमें महसूस हुआ कि सिक्योरिटी और लोगों को मुनज़्ज़म करने का कोई ख़ास वहाँ पे इंतज़ाम मौजूद नहीं था। जबकि इस वाक़े के होने के बाद फिर एक मुकम्मल तब्दीली अचानक देखने में, हमने खुद ये बात ऑब्जर्व की कि अगर यही काम पहले दिन किया जाता जिस दिन बहुत ज़्यादा रश होता है सुबह, इसलिए कि मुजदलफा से लोग सुबह सुबह हुज्जाज इकराम जो है वो मीना आते हैं और फिर खेमों में अपना थोड़ा बहुत सामान जो होता है वो रखने के बाद जमरात की तरफ जाते हैं और तकरीबन सारे लोग इस मूव कर रहे होते हैं। दूसरी बात इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि समझने के लिए कि मुजदलफा से चूंकि लोग पैदल चल के आ रहे होते हैं और फिर उन्होंने अरफा में भी पूरा दिन गुजारा होता है और उससे पहले मीना में भी लोग दिन गुजार के गए हुए होते हैं तो बहुत ज़्यादा थकावट होती है। तो इसमें भी जो मैनेजरियल जो स्किल्स हैं, बुनियादी बहुत बुनियादी उसूल उसका यह है कि इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाए और फिर उस हिसाब से इंतज़ामात वहाँ पे किए जाएं। बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये इसमें से कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं थी जिसके हम खुद जो है वो शाहिद हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है आपके सवाल का, उस टाइम पे जब ये हादसा हुआ था तो मैं खुद जमरात के बाहर था जब एम्बुलेंसेस बहुत ज़्यादा आई और फिर हमने महसूस किया कि कोई कोई वाकया हो चुका है और फिर हमें मालूम हुआ कि इतना बड़ा हादसा हो चुका है। और आप यकीन कर लीजिए कि उस वक्त जो वहाँ पे सूरत हाल थी, लोगों को उठा उठा के, हमारे एक साथी थे, मैं उनका वाकया आपको बताना चाहूँगा कि उनकी वालिदा उनके साथ थी, वो व्हील चेयर पर थी, उन्होंने अपनी वालिदा को वो नहीं बचा सके, वो खुद किसी तरह चूंकि वो जवान थे वो निकल आए बाहर, वालिदा को वो नहीं बचा सके, उनके सामने उनकी वालिदा जो है वो शहीद हो गई और बाद में उन्होंने उनकी वालिदा की डेड बॉडी जो है वो खुद अपनी बदलाव के तहत बाकी डेड बॉडी से उन्होंने अलग कर दी। तो वहाँ की जो इंतजामिया है या पुलिस है उनका आप में से जो लोग भी जो वहाँ गए होंगे उनका जो रवैया है वहाँ पे जिस तरह सलूक करते हैं सब जानते होंगे, सबने देखा होगा, सबने एक्सपीरियंस किया होगा। उस नौजवान को कहा गया कि तुम्हारा काम नहीं है हमारा काम है। यानी ये कितने ताज्जुब की बात है, उसने अपनी वालिदा की मैयत को खुद उससे अलग किया था मगर बाद में शी वॉज अमंग द मिसिंग पर्सन, यानी उसने खुद उसको अलग किया था फिर भी वो आप इससे अंदाजा लगाइए कि वहाँ किस तरह से सूरत हाल थी और किस तरह से इन लोगों के साथ किया गया। टोटली उनकी जो है ना मैनेजमेंट की फेलियर थी और यहाँ वहाँ पे जो जिंदा हुज्जाज कराम बाकी इंसानों को तो छोड़े मुसलमान हैं, हुज्जाज हैं, हज करने के लिए गए हैं, उनके असलन किसी इज्जत और एहतराम का ख्याल नहीं रखा जाता। तो फिर जो लोग जख्मी हो गए थे, जो लोग शहीद हो चुके थे, उनकी मैयतों के साथ उन्होंने क्या किया होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैनेजमेंट की मुकम्मल फेलियर थी और इसी वजह से ये मिसिंग पर्सन अभी भी तकरीबन 1.5 से 2 हज़ार के फिगर बताई जा रही है मुख्तलिफ आदाद शुमार के मुताबिक, अगरचि सही फिगर मालूम नहीं है। और मैं फिर मजीद इस पे बात करूंगा जब हम वहां मौजूद थे तो जो जो हुआ। तो मैं बुनियादी तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, इंतजामिया ने बिल्कुल भी ताउन नहीं किया है वहाँ जब ये हादसा हुआ था, उस वक्त अगर इस किया जाता तो मिसिंग पर्सनल पर्सन जो हैं इतनी ज़्यादा तादाद में ना होते।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब। जनाब देखिए, सानहे मिना एक महदूद इलाके में रुनुमा हुआ था। इस सानहे का इलाका बहुत वसी नहीं था। मिना में एक सड़क पर और वो भी वो सड़क जो है वो सऊदी सिक्योरिटी एहलकारों के हिसार में थी। आगे से उन्होंने बंद कर दिया था, फिर हर तरफ से इस पर नजर रखे हुए थे। इस सानहे में लोग लापता कैसे हो गए? भाई शहीद हो गए, चलिए दब गए, एक सड़क पे बहुत से लोग आ गए एक दूसरे में प्रेस हो के, वो शहीद हो गए, जख्मी हो गए, लापता कैसे हो गए?
यकीनन ये बहुत अहम सवाल है उसकी वजह यह है कि देखें 9 बजे जिस वक्त हादसा रोनुमा होना शुरू हुआ है और तकरीबन 9 बजे से 9:30 बजे के दरमियान हुज्जाज कराम वहाँ पे इतने एग्जॉस्ट हो चुके थे कि ना उस वक्त उनको पानी की कोई सहूलत मैसर थी। हालांकि करीब ही वहाँ पे सिविल डिफेंस का सेंटर भी मौजूद है और पुलिस स्टेशन भी मौजूद है सोकुल अरब स्ट्रीट पर, लेकिन उसके बावजूद ना तो कोई पानी के छिड़काव का इंतज़ाम किया गया हुज्जाज पे और ना उनको पानी की फरहमी का कोई बंदोबस्त किया गया। हुज्जाज मरमर के गिरते रहे। उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कम से कम 1 बजे शुरू हुआ। सबसे पहले जो मिस्री हुजाज हैं उनको हॉस्पिटल्स में ले जाना शुरू कराया गया, लेकिन उसके बाद 1 बजे से लेकर 5 बजे के वक्त के दरमियान में किसी भी डॉक्टर्स और दूसरे रेस्क्यू स्टाफ को वहां
जी जैदी साहब से राबता हमारा मुनकता हो गया है। यही सवाल मैं अबरार साहब से करना चाहूंगा। अबरार साहब, जनाब समंदर में अगर कोई वाकया रनुमा हो जाए या एक वसी इलाके में जलजला आ जाए या खुदा ना खास्ता किसी बड़े शहर में कोई बड़ा फसाद हो जाए और ये रिपोर्ट सामने आए कि कुछ लोग लापता हो गए हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन मीना में एक महदूद इलाके में एक छोटी सी सड़क पर जो पूरी तरह सऊदी सिक्योरिटी एहलकारों के हिसार में थी उसमें लोगों के लापता होने का मतलब क्या है?
जनाब मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करना चाहूँगा अपने तजर्बे यानी खुद जो मैंने देखा है वहाँ पे। इस सिलसिले में शुरू के यानी 4 अक्टूबर तक हम खुद वहाँ मौजूद थे और हमारे बहुत सारे दोस्त लापता थे और उनकी तलाश हम करते रहे। हमें यूँ महसूस हुआ कि जितने भी मतलब हम तो पाकिस्तान से गए थे, हम तो ज़ाहिर है अपने जो वहाँ पे लोग थे उनसे जो दफ्तर खारजा के या फिर जो हज इंतज़ामिया के जो लोग थे वहाँ पे उनसे हम रबते में थे और फिर हॉस्पिटल्स के अंदर जो जाते थे कि जो मिसिंग्स हैं कोई ज़ख्मी है या उनकी शिनाख्त के हवाले से, आप यकीन कीजिए कि हमें बिल्कुल वाज़े नज़र आता था। बल्कि बहुत सारे ऑफिशल्स कहते भी थे कि असल में मसला ये है कि ये वाक़ इतना बड़ा हुआ है कि मैनेजमेंट हज इतना बड़ा मतलब ये लोग हर साल जो है इनको इसमें आमदनी होती है, लोग पैसे दे के आते हैं, कोई उनकी कोई जिसको कहते हैं ना कि कोई एहसान नहीं है उनका, पैसे दे के जाते हैं लोग और उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस सब मामले में जो है वो भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। और चूंकि ये हादसा हुआ और उनको अंदाज़ा था यानी पहले ही 5 से 10 से 15 मिनट के अंदर हज़ारों के तादाद में जो है ना लोगों की शहादतें हो गई थी और इससे उनको अंदाज़ा हो गया था कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये हादसा हुआ है। जैसे अभी रिपोर्टें आ रही हैं 7,000 से ज़्यादा, बल्कि बाज़ लोग तो 8-9-10,000 की बातें कर रहे हैं, तो इस चीज़ का उनको अंदाज़ा हो गया था। तो लिहाजा वो अपनी शर्मिंदगी और उस रसवाई को छुपाने के लिए उन लोगों ने ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, उन्होंने गायब करना शुरू कर दिया था और वो ये चाहते थे कि आहिस्ता आहिस्ता जब लोग भूल जाएंगे और फिर लोगों के साथ जब उनके बाकी ममालिक के साथ जैसे कि अभी जिक्र हुआ कि बाकी जितने भी ममालिक के लोग इसमें शहीद हुए हैं या जख्मी हुए हैं उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, उनकी तरफ से कोई आवाज़ बुलंद नहीं हुई सिवाय एक ईरान के। और वहाँ भी हमने देखा कि जो ईरान के जिम्मेदार लोग थे वो मारे मारे फिरते थे अपने एक एक शहीद के लिए, अपने एक एक जख्मी के लिए। वो वहाँ भी ये कहते थे कि हम जब तक हमारा आखिरी शहीद या हमारा आखिरी जख्मी को हम रिसीव नहीं करते हम चैन से नहीं बैठेंगे। बाकी तमाम ममालिक के लोग, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग शहीद थे, जख्मी थे, हमें नज़र आ रहा था कि वो एक्टिव उस तरह से नहीं थे। शायद उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल दबाव था, शायद प्रेशर था या मुख्तलिफ हीले बहाने किए जाते थे। हमें जो बात समझ में आती है और जो तजर्बा हमने खुद देखा है उससे जो मालूम होता है और अभी जो रिपोर्टें भी आ रही हैं और जो चीज़ हमें पढ़ने को मिल रहा है, इन तमाम चीज़ों से हमें एक बात जहन में आती है वो ये है कि उन लोगों ने इस सानहे की जो सख्ती थी उसको कम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को शुरू में गायब कर दिया। और वहाँ हम जब वहाँ मौजूद थे तो कि बहुत सारे कंटेनर्स में बगैर शिनाख्त के लोगों की तदफीन की गई है। तो इसमें अगर आगे इसके ऊपर बहुत सारी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, लोगों को उनके वरसा की इजाज़त के बगैर, उनको गुस्ल व कफन के बगैर, हालांकि अगर हर मुल्क को उनके हाजी शहीद वापस दे दिए जाते वहाँ जो उनके इंतजामिया के लोग थे, क्या मसला था उनकी तदफीन के लिए, तकफीन के लिए वहाँ बिल्कुल इंतजाम हो सकते थे, मगर इस बड़े सानहे में इनकी जो रुसवाई हुई थी, इनकी जो शर्मिंदगी उनको दुनिया के सामने खानी पड़ रही थी, इसको छुपाने के लिए बहुत सारे लोगों को इन लोगों ने गायब कर दिया है, और इसमें हमें किसी भी शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। और अब जो हीले बहाने किए जा रहे हैं इसकी तहकीकात के हवाले से, इससे भी ये बात जाहिर होती है कि अगर दुनिया के सामने ये हकायक सामने आएंगे तो फिर इनकी रसोई में बहुत ज्यादा इजाफा होगा।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथियों ने बताया कि लंदन से हमारा राबता बरकरार हो गया है, जहाँ बरसग़ीर के मुमताज़ तजिया निगार मुशर्रफ हुसैनी साहब मौजूद हैं। हुसैनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। हुसैनी साहब, सानहे मिना के बारे में गुफ्तगू हो रही है, ये बहुत बड़ा सानहा है, 50 दिन हो गए। इस ताल्लुक से हमारी जो गुफ्तगू है वो यहाँ पहुँची है लापता अफराद के बारे में। भाई, लापता अगर कोई, कहीं जलजला आता है, बिल्डिंगें कोलैप्स कर जाती हैं, दब जाती हैं, लोग मलबे के नीचे दब जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि लापता है, पता नहीं कहाँ चले गए। कोई बहुत बड़ा कहीं फसाद हो गया तो नहीं पता चलता, कुछ लोग भाग गए होंगे, चले गए होंगे। मेना में एक सड़क पर, महदूद जगह पर एक हादसा रूनुमा होता है, तो वहां लोग या शहीद हुए या जख्मी हुए। शहीद हुए तो उनके जनाजे मुर्दा खानों में होंगे, जख्मी हुए तो अस्पतालों में। लापता हुए और 2 महीने को, 2 महीने होने को आ रहे हैं और अब तक उनका पता नहीं चल पा रहा है, ये क्या राज है, ये क्या मसला है?
जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल में सारी दुनिया इन बातों से वाकिफ़ है कि हज की एक मज़हबी हैसियत है, एक उसकी सियासी हैसियत है, एक उसकी इक्तिसादी हैसियत है, और सऊदी हुक्मरान भी इन तीनों हैसियतों से मुकम्मल फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और मज़हबी हैसियत उनके लिए बड़ी अहम है, चूँकि मज़हबी हैसियत को ही वो सियासत में और इक्तिसादी लिहाज पर कैश करते आए हैं और कैश करते जा रहे हैं, और इससे अपना पूरी दुनिया बिलखसूस मशरक़ वस्ती में अपने असर रसूख को बढ़ा के अपने आप को फॉर सेल का बोर्ड लगा के इस्तेमारी क़ुव्वतों के आगे पेश करते हैं कि अब हम हमारी वैल्यू लगाएं कि क्या है और क्या नहीं। अब ये जो वाक़या पेश आया है इसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, जो लापता अफराद की बिलखसूस है, बहुत ही अहम मसला है लापता अफराद का। और दुरुस्त है कि वो जो वाक़या पेश आया, जिनकी जो जिन लोगों के वहाँ पे हलाकतें हुई और जो लोग अफराद इस दुनिया से चले गए, उसमें भी देखिए शुरू से ही इनकी जो लॉबी थी वो यही कह रही थी कि अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की कुदरत थी, और यहाँ पे इतने अच्छे मुकाम पे उनको इंतकाल हो गया तो इस अच्छी हैसियत और क्या हो सकती है। यानी ये नहीं समझ रहे कि दुनिया इस वक्त कहाँ पहुँच चुकी है, अकली लिहाज से, शऊर के लिहाज से, इल्म के लिहाज से, समझ बूझ के लिहाज से और तज्जिए के लिहाज से दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। ये अभी तक उसी जाहिलियत के दौर में रह रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये सानहा इसी तरीके से मिटा दिया जाएगा और कोई इनको पूछेगा नहीं। ये यकीनन बहुत अहम मसला है कि एक महदूदा है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि लामहदूद जगह है जहां पर लोग गायब हो गए और उसके बाद उनका पता नहीं चलेगा। हज के लिए आए थे तो या वो मिना में होंगे या अरफात में होंगे या हज के मौके पर या मक्के में, हद अकल मक्के में तो जरूर होंगे वो लोग सारे, और उनको ये कह देना कि लापता हो गए हैं। कोई ऐसा नहीं था कि कोई धमाका हो गया या कोई जलजला हो गया, वहां पे भी लाशें कुचली जाती हैं, दफन हो जाती हैं, पता नहीं चलता है। यहां तो सारी लाशें कुचली तो नहीं गई हैं, वहीं पे दम घुटने से लोगों का इंतकाल हुआ है, लेकिन मसला यह है कि अगर ये लाशें वापस चली जाती हैं उन ममालिक में जहां पे से वो आई हैं, वहां पे उनके पोस्टमार्टम के जरिए मालूम किया जा सकता है कि वाकयात क्या हुए हैं, क्या कुछ पेश आया है, और शायद बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हैं, बहुत बड़े बड़े राज हैं जिनसे अभी पर्दा उठना बाकी है, जिसकी वजह से उन्होंने उन अफराद को जिनको वो करना चाह रहे थे, मिसाल के तौर पे वहां से लापता करना चाह रहे थे, वो लापता हुए हैं। मसलन मौलाना फखरुद्दीन साहब पाकिस्तान से, जिनका जो गए थे हज के लिए और बड़ी मुकद्दर हस्ती थी और बड़े सियासी हवाले से भी, मजहबी हवालों से भी उनका बड़ा मुकाम था, उनको लापता हो जाना और फिर उसके बाद उनका उनके जिस मतलब है उनके जिस जसद की जो वो मिली है, तस्वीर मिली है, उनसे पता चलता है कि बिल्कुल तरोताज़ा और कोई उनमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि कुचले जाने या इन चीज़ों की ऊपर दलालत करे। और ये बातें कि फिर वो जसद जो थे उन हाजियों के, वो तो इमानत थी उनकी, जिन जिन ममालिक से वो आए थे उनकी भी इमानत थी, उनके रिश्तेदारों के भी, उनको इस तरीके से, लेकिन असल इनकी जो शहनशाहाना जहनीयत है वो बरवेकार आई है। ये अपने अलावा सारी कौमों को जिस तरीके से वहां पे लोग मुलाजमतें करने जाते हैं उनको अपना गुलाम समझते हैं, और वही गुलामी का अंदाज इन्होंने अपनाया कि उनके लिए कोई हैसियत नहीं थी उनकी। नंबर एक, उनको इन्होंने बुलडोज करके एक बहुत बड़ी तादाद को वहां से गायब करना था, लापता करना था, ताकि ان چند افراد کے بارے میں بھی بات کی جا سکے جو کہ بڑی اہم مقتدر ہستی ہیں, وہ اس میں جو لاپتہ ہوئی ہیں ان کے بارے میں جو معلوم نہیں ہو رہا. لاپتہ کا مطلب ہے کہ ابھی وہ لاپتہ ہیں, ان کو معلوم نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی بات اور اہم بات یہ ہے کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا انفراسٹرکچر اس قابل نہیں ہے کہ حج کے انتظامات کو سنبھال سکے, اور حج کے انتظامات کو اس طریقے سے لے کر جانا کہ جہاں لاکھوں کی تعداد میں افراد وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں, ان اتنی بڑی بد انتظامی اور بد نظمی, یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پورے تمام اسلامی ممالک کو آگے بڑھ کر آنا ہوگا. لیکن جو یہ لقمے اقتدار میں کے بھوکے افراد کے منہ میں ڈال دیتے ہیں ان ممالک میں, ان کی وجہ سے کسی کو جرت نہیں ہو رہی کہ یہاں پہ بات کر سکے. یہی وقت ہے کہ حق کی بات کو بلند کرنے کا, آواز کو بلند کرنے کا اور بلند رکھنے کا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ عرصے بعد یہ سانحہ مٹ گیا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی, بس یہ پرانا واقعہ ہے اور اس کے اوپر اس کو بھول جائیں, ابھی آئندہ کے لیے آگے دیکھتے ہیں, آئندہ ٹھیک ہونا چاہیے. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. یہ مذہبی حوالے سے بہت اہم واقعہ ہے, سیاسی حوالے سے اہم واقعہ ہے, اور اس کا پورے مسلمانوں کی عزت و آبرو پر بہت بڑا اثر پڑا ہے اور پڑ رہا ہے اور آئندہ بھی پڑتا رہے گا. لہٰذا اس کے اوپر اسلامی ممالک کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس معاملے کے انتظامات کو آئندہ کے لیے اپنے ہاتھ میں لے. کم از کم 7,000 افراد کی جو تعداد دی جا رہی ہے, یہ حجاج کرام وہ تھے جو تمام ممالک سے آئے تھے یہاں پر حج کرنے کے لیے, اور ان کا ایسے لاپتہ ہو جانا بذات خود سعودی حکمرانوں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی باڈیز ملنی چاہیے, اگر ان کی باڈیز نہیں دی گئی تو بتایا جائے کہ ان کی باڈیز کے ساتھ کیا ہوا ہے, ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہونی چاہیے, ان کا معلومات ہونی چاہیے, اس سانحے کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ پیش کیوں آیا, کیا وجوہات تھی, کیا معاملات تھے کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ پیش آیا, اتنی ہزاروں کی تعداد میں حجاج جو ہے ان کا انتقال ہوا, وہ کیا اس کے عوامل کیا تھے, ان کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ آئندہ نہ ہو سکے. نمبر ایک. نمبر دو, اگر کوئی بیچ میں گڑبڑ کا معاملہ ہے تو اس گڑبڑ کے معاملے کو بھی سامنے آنا چاہیے.
بہت بہت شکریہ زیدی صاحب. جناب سانحہ رونما ہو گیا, 7,477 کی فہرست تو خود سعودی حکومت نے جاری کی ہے کہ اتنے شہید ہوئے ہیں. اس سانحے کے بعد ظاہر ہے کہ سعودی حکومت کے کچھ فرائض تھے, اس نے اپنے فرائض پر کس حد تک عمل کیا ہے؟
ابھی تک فرائض پر کوئی عمل نہیں کیا گیا, کیونکہ اگر عمل کیا گیا ہوتا تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی تحقیقاتی رپورٹ آ چکی ہوتی, کیونکہ 2 ماہ کا عرصہ کافی طویل عرصہ ہے. ابھی اس سے اندازہ کریں کہ جن ممالک کے حجاج اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں ان کو سرد خانوں تک بہت عرصے بعد رسائی نصیب ہوئی, تو یقیناً اس میں بھی بہت سے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں کہ اس دوران جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں اس طریقے سے جو زخمی ہیں یا لاپتہ افراد ہیں آخر وہ کدھر گئے, اس کے حوالے سے سوالات کے جوابات دیے جانے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ سعودی عرب کی حکومت کو اس بات کا سوال کا جواب دینا ہے کہ ابھی تک جو شہدا ہیں ان کے حقوق ادا نہیں کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی شام, مصر اور عراق کی حکومت کی جانب سے بھی باقاعدہ سعودی عرب کی حکومت کو ذمہ دار قرار دیا گیا اور ان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس واقعے کی ٹھوس تحقیقات سامنے لائے, لیکن ابھی تک وہ کسی بھی قسم کی تحقیقات بھی پیش کرنے سے قاصر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک سے تعاون بھی نہیں لینا چاہ رہے. گویا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ کچھ عرصے کے بعد لوگوں کی یادداشت سے فراموش ہو جائے اور اس کے بعد اس پر ایک مکمل خاموشی چھا جائے. لیکن یقیناً یہ اس وقت کی ضرورت نہیں ہے, وقت کی ضرورت یہ ہے کہ وہ کھل کے تمام معاملات کو سامنے لائیں اور جو بھی ذمہ دار ہیں اس کا تعین کریں, کیونکہ سعودی عرب کی حکومت اس وقت مختلف ملکوں کے ساتھ مارکہ رائیوں میں مصروف ہے, یمن کے ساتھ مہم جوئیوں میں مصروف ہے. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ وہ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان تحقیقات کی جانب توجہ دیں, کہ جو کہ ایک انتہائی سنگین میٹر ہے کہ کتنے ملکوں کے شہدا جو ہے وہ ان کے بارے میں نہیں معلوم ہو رہا کہ آیا وہ زندہ ہیں, وہ کہاں پہ چلے گئے, اس کے بارے میں کوئی ابھی تک رپورٹ سامنے نہیں آ سکی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو سیکیورٹی لیپسز ہیں اس کے حوالے سے بھی دیکھیں, وہاں پہ سیکیورٹی کیمراز لگے ہوئے تھے, سب کچھ فیسلٹیز موجود تھیں, لیکن اس کے باوجود سیکیورٹی فیلئر ہوا. اس سال سیکیورٹی عملے کی تعداد کو کم کیا گیا, کیوں کیا گیا اس کا بھی سوال جواب دیا جانا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ وہاں پر ریسکیو آپریشنز کے لیے جب وہاں پہ سول ڈیفنس سینٹر موجود ہے, نزدیکی پولیس اسٹیشن موجود ہے, تو ایک اہم سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جس وقت حجاج وہاں پہ ایگزاسٹ ہوئے اور اس کے بعد مر مر کے گرنے لگے تو ان پر نہ تو پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا نہ ان کو پانی سپلائی کیا گیا، آخر کیا کون سی ایسی وجوہات تھی جس کی بنا پر وہ حجاج جو بچائے جا سکتے تھے ان کو بھی نہیں بچایا جا سکا؟ تو اس سے نہ صرف انتظامی نااہلی سامنے آ رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے بہت بڑی انکیپیبلٹی سامنے آ رہی ہے، کیونکہ اتنا بڑا انٹرنیشنل ایونٹ ہے جس میں کم از کم 5 ملین پوری دنیا سے حجاج کرام آتے ہیں، تو ایک سعودی عرب کی حکومت کی ایک واضح ذمہ داری ہے اور وہ اس ذمہ داری سے ابھی تک پہلو تہی کر رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے اس کے سلسلے میں کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے جس کے نتیجے میں وہ عالم اسلام کو اور عالمی برادری کو مطمئن کر سکیں۔ وہ صرف اور صرف اس واقعے کو ایک فطری حادثہ ڈکلیئر کر کے اس واقعے کو وقتاً فوقتاً اس کو فراموش کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ واقعہ لوگوں کی یادداشت سے فراموش ہوتا چلا جائے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور کھل کے ایک ایمرجنسی تحقیقات کی جائیں تاکہ فوری طور پہ ایک تحقیقاتی رپورٹ سامنے لائی جائے کہ جس میں تمام چیزوں کو اسپاٹ لائٹ کیا جائے کہ کہاں کہاں پہ ان سے سیکیورٹی لیپس ہوئے اور اگلے سال ان کا کیسے تدارک کیا جا سکتا ہے تاکہ اگلے سال جس وقت لوگ حجاج کرام آئیں اپنے گھروں سے روانہ ہوں تو ان کے ذہنوں میں یہ فیئرز نہ ہوں کہ بھائی ہمارے ساتھ اللہ جانے ہمارے پاس ہمارے سامنے کیا بیتے گی، جہاں پہ جس ملک میں یہ حال ہے کہ وہاں پر منا سے لے کے جمرات کے درمیان میں پانی میسر نہیں ہے تو ہمارا وہاں پہ کیا بنے گا۔ تو یہ بہت اہم سوالات ہیں جس کا جواب دینے کی ان کو ضرورت ہے، تحقیقات کو پائے تکمیل تک بھی پہنچانے کی ضرورت ہے اور اس میں ذمہ داری کا احساس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی تک سعودی حکومت کی طرف سے اور ان کے ذمہ داروں کی طرف سے اس کے حوالے سے مکمل فقدان سامنے آ رہا ہے جو کہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ یہ کرٹیکل کوسچنز ہیں جس کا سعودی حکومت کو جواب دینا ہے
جی
اور اس سے وہ قطعی طور پہ پہلو تہی نہیں کر سکتے اور نہ ان کو کرنی چاہیے۔
ابرار صاحب، جناب ثانی کے تعلق سے دیکھیے بہت سے ابہامات شروع سے ہی موجود رہے ہیں جن کو سعودی حکومت نے دور کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس کے برعکس مسلسل غلط بیانی اور حقائق کی پردہ پوشی کر رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟
جی میرے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ابھی کچھ دن پہلے کچھ رپورٹیں آئی ہیں جو مکہ میں جو حادثہ ہوا تھا بن لادن کمپنی کی طرف سے وہ جو ٹاور گرا تھا اس کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اب اس رپورٹ میں وہاں پہ تھے اس وقت شروع میں جب یہ واقعہ ہوا تھا اس کے فوراً بعد کچھ لوگوں کو جو آپریٹ کرتے تھے وہاں پہ یا جو کام کرواتے تھے ان کو معطل کیا گیا تھا اور ہمیں یہ توقع تھی کہ یہ لوگ ایسے ہی کریں گے، یعنی وہاں جو بالکل غیر ذمہ دار کچھ لوگوں کے اوپر کچھ سپروائزرز کے اوپر یا کچھ جو آپریٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو ان کے اوپر یہ ملبہ ڈالا جائے گا اور اس سارے اہم واقعے سے جہاں پہ کئی لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اور کئی لوگ زخمی ہوئے تھے اس سے پہلو تہی کر لیں گے یہ لوگ، اس وقت بالکل توقع اسی بات کی تھی۔ اور ابھی جو رپورٹ لولی لنگڑی سامنے آئی ہے اس مکہ واقعے کی میں بات کر رہا ہوں اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے دونوں واقعات کے حوالے سے۔ اب چونکہ میں نے عرض کیا منا کا جو واقعہ ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور پھر ان کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان آتے ہیں کہ بھائی اگر آپ اتنے لوگوں کے لیے انتظامات نہیں کر سکتے، آپ نے مختلف جگہوں پہ جس کو کہتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو بیزی کیا ہوا ہے، یمن میں آپ دیکھ لیں، شام میں آپ دیکھ لیں، ان علاقوں میں، اور آپ نے سعودی عرب کی جو حالات ہیں وہ بھی اس موضوع اس بات کے لیے نہیں رکھے ہوئے کہ دنیا بھر سے حاجی وہاں پہ آئے۔ یہ ایک اسلامی سب سے اہم جو اجتماعی عبادت ہے اس کو انجام دے سکے تو پھر آپ پھر یہ ذمہ داری ہی کیوں لیتے ہیں؟ پھر آپ کو ہی اس سے عہدہ برا ہونا چاہیے اور اس سے بلکہ میں کہوں گا کہ آپ کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور ایک کمیٹی اسلامی ممالک کی ہونی چاہیے کہ جو مکہ اور مدینہ چونکہ یہ مشترکات ہیں یعنی اسلامی ممالک کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے اور یہاں پہ ایک ایسی انتظامی کمیٹی ہونی چاہیے کہ جو ہر سال لاکھوں فرزندان توحید جو مناسک حج کے لیے وہاں آتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے اور ان کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ ایک کام ہونا چاہیے۔
بہت بہت شکریہ ابرار صاحب، بہت بہت شکریہ۔
اچھی بات تھی
جی ابرار صاحب، بہت بہت شکریہ۔ وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے، ایک سوال ہم حسینی صاحب سے کرنا چاہتے ہیں۔ حسینی صاحب، جناب 3 منٹ کا وقت ہے हमारे पास 3.5 मिनट का, इस सानहे के पीछे किसी साजिश का कितना इम्कान है?
काफ़ी कुछ कहा जा रहा है और काफ़ी कुछ सुना जा रहा है साजिश के बारे में, और ऐसा नहीं है कि कोई अवामिल नहीं है, और यकीनन उस तरह के अवामिल होंगे जैसे मैंने जिक्र किया कि इसमें बड़ी मुक्तदर हस्तियां जो है वो लापता हुई हैं, और उसके पीछे जो अवामिल हैं जिस तरह सिक्योरिटी अफराद की तादाद को घटा देना और दीगर जिस तरीके से इसकी तहकीकात नहीं होने दी जा रही, दीगर ममालिक की मुदाखलत को नहीं पसंद किया जा रहा, और उनको होना ये चाहिए था कि जो इतने ममालिक अगर किसी मुल्क के सफारतखाने को किसी दूसरे मुल्क में नुकसान पहुँचता है तो उसी जिस मुल्क का सफारतखाना होता है उनके अफराद को बुला के तहकीकात में शामिल किया जाता है, तो जिन ममालिक के अफराद इसमें सानहे में जाँ बहक हुए हैं उनके लिए तहकीकात होनी चाहिए थी और उनके सामने हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए थी कि बिल्कुल वाजे और रोशन होती कि क्या तहकीकात हुई, क्या नतीजा निकला, लेकिन उन सारी चीज को छुपाया जा रहा है कि हम किसी की मुदाखलत इसमें पसंद नहीं कर रहे, ये सारी अवामिल ऐसे हैं। फिर इस वक्त जो मशरक वुस्ता की कुल्ली तौर पे सूरत हाल बनी हुई है वो भी बजाय इस बात को जाहिर कर रही है कि बहुत सारे यानी ब्लॉक्स तब्दील हो रहे हैं, लोगों के जो साइड्स थी वो तब्दील हो रही हैं और जो सियासी तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं, यमन के हालात हैं, सीरिया के हालात हैं, और इसके अलावा अगर आप बहरीन के हालात को देख लें और कुलन लीबिया के हालात को देख लें, फिलिस्तीनियों के हालात को देख लें और मिस्र के हालात को, इन तमाम हालात को के तनाजुर में अगर देखा जाए तो इस वक्त मिडल ईस्ट एक वॉल्केनो के बिल्कुल टिप है जो कि किसी भी वक्त बर्स्ट होने की पोजीशन में पहुंच चुका है। उन हालात में इस वाक्य का रूनमा होना और फिर कई मुक्तदर हस्तियों का वहां से लापता हो जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और जिसको ब्रश साइड नहीं करना चाहिए। मजहबी हवाले से इसके मैं कहता हूं कि तमाम इस्लामी मालिक की वजारत है मजहबी उमूर को चाहिए कि वो इसमें आगाही हासिल करें कि क्या सूरत हाल पेश आई। सियासी हवाले से भी इस पर अमल दरामद की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि सऊदी अरब अगर एक तरफदारी कर रहा है किसी मुल्क की या कोई खुद इन्वॉल्व है, वो पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम है, मसले का हिस्सा है, ना कि सोल्यूशन का उसके हल का हिस्सा है, तो इस सूरत हाल में हज के ऊपर उसके ये इंतजामात और तमाम चीजों को अपने हाथ में लेना और इस तरीके से अंजाम देना जबकि बहुत बड़ी बदइंतजामी और बदनज़मी का शिकार वो ऑलरेडी हो चुके हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी सलाहियत नहीं रखता कि इतने बड़े इबादत के इस मसले को हल कर सके या उसके इंतजामात संभाल सके, तो यकीनन बाकी इस्लामी ममालिक को भी इस पे दबाव डालना पड़ेगा, आगे बढ़ के आना पड़ेगा कि इस मसले को ब्रश साइड ना होने दें, इसको साइड पे किनारे ना लगाएं, बल्कि इस मसले की बुनियाद पर आइंदा के इंतजामात को इतने अच्छी तरीके से देखा जाए कि अब जब पूरी दुनिया की नजरें इस्लाम पर मरकूज हो चुकी हैं, आपके यूरोप की, अमरीका के, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, तमाम दुनिया के ममालिक, मगरबी ममालिक हों या फार ईस्ट के ममालिक हों, इस वक्त वो इस्लाम को देख रहे हैं, तो इस्लाम की जो सबसे बड़ी इबादत है वहां पर अगर ये हशर कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ी बदनामी के बायस बनता है तमाम इस्लामी ममालिक के लिए। लिहाजा तमाम इस्लामी ममालिक को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, कमेटी की तश्कील हो या किसी भी हवाले से हो, इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के का जरिया नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ऐसी कमेटी जरूर होनी चाहिए कि आइंदा से इंतजामात को तसल्ली बख्श अंदाज में आगे बढ़ाया जाए और ये ना हो कि अगर किसी से सऊदी अरब के ताल्लुकात ठीक नहीं या कोई और कहीं और से उनको शह दे दी जाए तो वो इस तरह के वाकयात रूनमा हो और सऊदी हुक्मरान खुद मशकूक पोजीशन में पहुंच जाए कि लोग उन पर शकूक व शुबहात का इजहार करें।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हुसैनी साहब। इसी के साथ असद जैदी और अबरार हुसैन के भी हम शुक्रगुजार हैं। बहरहाल इस सानहे के में शहीद होने वाले जो अफराद हैं और उनके वरसा के भी कुछ हकूक हैं, उनकी बहाली भी ज़रूरी है, उनका हुसूल भी ज़रूरी है। वरसा का सबसे पहला और बुनियादी हक यह है कि उन्हें मालूम हो कि उनके अज़ीज़ जो हज करने गए थे वो किस तरह और किन हालात में वो शहीद हुए हैं, उनका जिम्मेदार कौन है। और इस सानहे ने मुसलमानों की अहम तरीन और सबसे बड़ी इज्तिमाई इबादत को गैर महफूज बना दिया है। जहनों में यह ख्याल जोर पकड़ता जा रहा है कि हज महफूज नहीं रहा, इसमें दर्दनाक मौत का सामना हो सकता है। इस किस्म के खदशात को कैसे दूर किया जाए यह पूरी उम्मत मुस्लिमा को मिलकर सोचना पड़ेगा। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतजार रहेगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज़।